परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमें विश्वास है कि आप सब इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से यूहन्ना की पहली पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। इस पुस्तक का मुख्य विषय है संगति। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर पिता की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से नए नियम के पहला योहन्ना के पत्र से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने इसके परिचय को देखा, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और पहला योहन्ना की पत्री एक अध्याय उसके एक से तीन पद तक का अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके सामर्थ्य और जीवित वचन के लिए, जिसके द्वारा से आप हम सबसे बोलते और बातचीत करते हैं। इस समय जब हम आपके जीवित वचन पहला योहन्ना की पत्र से अध्ययन करते हैं, तो हमारी प्रार्थना है पिताजी कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि प्रत्येक जब आपके वचन में से सुने तो आपका वचन हर एक के जीवन में कार्य करने पाए, उनसे बोलने और बातचीत करने पाए। आप मुझसे भी बातचीत करें, हम सबों को सिखाएं, ताकि इस पुस्तक के द्वारा, इस पत्री के द्वारा हम में से हर एक जन आपके आशीषों को प्राप्त कर सके। प्रभु जी, आज के इस अध्ययन पर भी हम आपकी आशीष चाहते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम देख रहे हैं कि यूहन्ना इफिसूस की कलिसिया का पास्टर था और उसने अपनी कलिसिया को यह पत्र लिखा, जिसका उद्देश्य था कि वह अपनी कलिसिया को ज्ञानवाद की शिक्षा के भ्रम से बचाए, जिसमें यह माना जाता था कि प्रभु यीशु मनुष्य दिखाई देता था परंतु वास्तव में वह था नहीं, या फिर यह कि उसका ईश्वरत्व जिसे उसने बपतिस्मा पर ग्रहण किया था, वह उसे क्रूसीकरण के समय छोड़कर अलग हो गया था। अतः यूहन्ना की शिक्षा थी कि विश्वासियों को अनंत जीवन प्राप्त है, जिसे संभालने के लिए उन्हें पाप से बचना है, और परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु के नाम में विश्वास करके पूर्ण आनंद प्राप्त करना है, तथा परमेश्वर की सहभागिता हेतु परस्पर सहभागिता रखना है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और यूहन्ना की पहली पत्री उसके अध्याय एक में आते हैं, जिसका विषय है परमेश्वर ज्योति है, बालक परमेश्वर से सहभागिता कैसे रखे। परमेश्वर ज्योति है, हम इस पत्री के अमुख में देखते हैं, तदुपरांत देखेंगे कि यूहन्ना के प्रिय बालक विश्वासी परमेश्वर के साथ कैसे सहभागिता रखें। जैसा कि मैंने प्रस्तावना में व्यक्त किया है, यूहन्ना ने यह पत्र इसलिए लिखा कि वह कलीसिया को ज्ञानवाद की झूठी शिक्षा से सुरक्षित रखे, क्योंकि यह शिक्षा कलीसिया में प्रवेश कर रही थी। वे अपने परम ज्ञान का घमंड करते थे, वे प्रभु यीशु के ईश्वरत्व को तो स्वीकार करते थे परंतु उसकी मानवता का इनकार करते थे। देखिए यूहन्ना कैसे समझाता है कि सच्चा ज्ञानवाद परमेश्वर का परिशुद्ध ज्ञान है। परमेश्वर ज्योति है, लिखा है जो आदि से था। आदि, आदि से यूहन्ना का क्या अभिप्राय है? धर्मशास्त्र में आदि के तीन अभिप्राय हैं। पहला, उत्पत्ति, एक अध्याय उसके एक पद में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, इसका समय गिना नहीं जा सकता। इस विषय में मैंने अनगिनत पुस्तकें पढ़ी हैं और अंत में यही देखा कि वैज्ञानिकों और आध्यात्मिक विषय के विद्वानों का आदि संबंधित ज्ञान स्पष्ट नहीं है कि उत्पत्ति एक अध्याय का एक पद का समय क्या था। कहा जाता है कि कुछ मसीही वैज्ञानिकों का मानना है कि आज की पृथ्वी उतनी पुरानी नहीं जितना कि पहले के वैज्ञानिक कहते हैं। मेरे विद्यालय में यह माना जाता था कि हमारी पृथ्वी 3 लाख से 7 लाख वर्ष पुरानी है, परंतु शीघ्र ही वैज्ञानिक कहने लगे कि यह लाखों वर्ष पुरानी है। जब मैंने विद्यालय अध्ययन करना समाप्त किया तब कहा जाता था कि हमारी पृथ्वी 25 लाख वर्ष पुरानी है और धीरे धीरे वे करोड़ वर्ष तक पहुंच गए। अब कुछ वैज्ञानिक इन पुराने अनुमानों से हटकर पृथ्वी की उत्पत्ति को समय का अनुमान कम लगाते हैं, क्योंकि उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय उसके 1 पद का समय निश्चित व्यक्त नहीं है। इसलिए यह पुरानी पृथ्वी या नई पृथ्वी दोनों विचारों में उचित बैठेगा। सच तो यह है कि उत्पत्ति 1 अध्याय उसके 1 पद में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। अब यदि आप इस तथ्य को स्वीकार न करें तो आप परमेश्वर के वचन के अध्ययन में आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि शेष संपूर्ण बाइबल इसी पद पर आधारित है। क्या परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की या यह संयोगवश प्रकट हो गई? मेरे मित्रों, हमारे इस संसार की उत्पत्ति के पीछे बौद्धिक कार्य हैं। हम उत्पत्ति का समय तो नहीं जानते हैं, परंतु यदि आप 1 करोड़ वर्ष की कल्पना भी करें तो वह निराधार नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर समय के पार है। मैं नहीं जानता कि पृथ्वी की रचना से पूर्व वह क्या कर रहा था, परंतु निश्चय ही वह कुछ कर रहा था। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की तो उसमें उसका एक निश्चित उद्देश्य था। वह अपने जगत में एक योजना की पूर्ति कर रहा है जो मनुष्य की समझ से परे है। परमेश्वर ने सृष्टि का वृतांत इसलिए नहीं दिया कि हम भूगर्भ विज्ञान का अध्ययन करें, परंतु उसने इस सब चट्टानों को इसलिए रखा कि देखें आप क्या समय को गिन पाएंगे। परमेश्वर के वचन एक और आदि शब्द है जो यूहन्ना रचित सुसमाचार के प्रथम पद में है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तदोपरांत वह सृजन कार्य का उल्लेख करता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 1 से 3 पद में। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। मेरे मित्रों, आप पृथ्वी की उत्पत्ति से पूर्व लाखों करोड़ों वर्ष पीछे जाएं तो प्रभु यीशु वहां उभरता है। वह एक प्राचीन है। यूहन्ना लिखता है आदि में वचन था, है नहीं। इसका अर्थ है कि आदि का आरंभ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का आरंभ नहीं है। यह बात मेरी समझ से परे है कि प्रभु यीशु कब से है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ। यह इसे स्पष्ट करता है। यह समय मेरी समझ में नहीं आता है, परंतु यहां पर हम देखते हैं कि इस वचन के द्वारा हम समय को समझ पाते हैं। अब हम आगे देखते हैं, तीसरी बार आदि का प्रयोग किया गया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 1 पद में, वह जो आदि से था अर्थात बेतलेहम में प्रभु यीशु का जन्म। जब यीशु 30 वर्ष का था तब यूहन्ना की भेंट उससे हुई। यूहन्ना और उसके भाई याकूब की भेंट यीशु से यरूशलेम में हुई थी। जब यीशु ने उन्हें बुलाया तब वे अपने पिता के साथ थे और वे एक समृद्ध व्यापारी के पुत्र थे जो अपना जाल सुधार रहे थे। वे सब कुछ त्याग कर उसके पीछे हो लिए। अब वही यूहन्ना कहता है, मैं उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं, और वह प्रभु यीशु के परिपूर्ण व्यक्तित्व की सच्चाई को प्रकट करता है। तो आइए हम देखते हैं पहली चीज हमने सुना है कानों से, दूसरी बात हमने देखा है अपनी आंखों से, तीसरी बात ध्यान से देखा घूर घूर कर देखा, और चौथी बात हाथों से छुआ है। मेरे प्रियो, यूहन्ना प्रभु यीशु के देह धारण तथा उसके साथ इस पृथ्वी पर अपनी संगति के बारे में कह रहा है। यूहन्ना कल्पना नहीं कर रहा है या एक अनुमान नहीं लगा रहा है, उसने प्रभु यीशु की वाणी को स्वयं अपने कानों से सुना था। वह परमेश्वर ही की वाणी थी, अपनी आंखों से उसे देखा था। प्रेरितों ने यीशु की वाणी सुनी थी, उसको अपनी आंखों से देखा था। आज तो हम प्रभु यीशु को केवल विश्वास की आंखों से ही देख पाते हैं। पहला पत्रस 1:8 में पत्रस कहता है, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। थोमा कहता है कि जब तक वह प्रभु यीशु को छूकर ना देख ले, उसके फिर जी उठने पर विश्वास नहीं करेगा। अतः प्रभु ने उससे कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 20:29 में, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। मेरे प्रियो, आज हम विश्वास में हैं और प्रभु यीशु हम पर भी थोमा की नाई यथार्थ में प्रकट हो सकता है। लिखा है ध्यान से देखा। ध्यान से देखा का जो मूल यूनानी शब्द है उससे निकला है सिनेमा घर। सिनेमा घर शब्द से आया है। इस मूल यूनानी शब्द का अर्थ है टकटकी लगाकर देखना। यूहन्ना के कहने का अर्थ है कि उन्होंने प्रभु यीशु को 3 वर्ष तक ध्यान से देखा है और वे किसी प्रकार की गलती नहीं कर सकते। यूहन्ना ही तो लिखता है 3:14 में कि जिस प्रकार मूसा ने जंगल में पीतल के सांप को ऊंचे पर लटकाया था, उसी प्रकार मनुष्य के पुत्र का भी ऊंचे पर लटकाया जाना आवश्यक है। जंगल में इसराइलियों को सांप काट लेते थे और जब वे उस पीतल के सांप को देखते थे तो चंगाई पाते थे। इसी प्रकार हमें प्रभु यीशु को देखना है और उद्धार पाना है। इस पत्री में हम ऐसा ही करेंगे। देखने से उद्धार मिलता है और टकटकी लगाकर देखने से पवित्रता मिलती है। यूहन्ना 1:9 में प्रेरित लिखता है, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच डेरा किया, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा और सत्य से पूर्ण। मेरे प्रियो, हमें उसे उद्धार के लिए नहीं देखना है वरन विश्वासी की आंखों से उसे निहारते रहना है। तब वह आगे कहता है कि हाथों से छुआ। यूहन्ना कहता है कि उन्होंने उसे देखा ही नहीं, छू कर भी देखा है। फसा के भोज के दिन यूहन्ना ही तो उसके कंधे पर सिर रखे हुए था। लूका रचित सुसमाचार 24:39-40 में देखते हैं, मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूं, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। मेरे प्रियो, यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ और पांव दिखाए। मेरे विचार में उन्होंने उसे छुआ और उसके हाथों में कीलों के घाव को सहलाया था। वचन देहधारी हुआ था, परमेश्वर ने मानव रूप धारण किया था। 67 में पौलुस की मृत्यु के बाद 2 धारणाएं कलीसिया में प्रवेश कर चुकी थीं। एक के अनुसार तो हम परमेश्वर को नहीं जान सकते और दूसरी थी कि हमारा ज्ञान अन्यों से अधिक है। वे अपने आप को महान संत मानते थे। ज्ञानवादियों का एक विचार था कि प्रभु यीशु जन्म के समय तो मनुष्य था, परंतु बपतिस्मा पाने के बाद वह मसीह हुआ। और क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद मसीह प्रभु यीशु से अलग हो गया। यूहन्ना इसी विचार का खंडन करता है। अतः यूहन्ना रचित सुसमाचार में वह यहां तक कहता है कि प्रभु यीशु तो पुनरुत्थान के बाद भी मानवीय देह में ही था। अतः यूहन्ना एक धारणा का प्रतिपादन नहीं कर रहा है, वह अपना अनुभव हमें सुना रहा है कि उन्होंने प्रभु यीशु को देखा था और छुआ भी था। तो आइए हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना की पत्री एक अध्याय और उसके दो पद। यहां पर लिखा हुआ है, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। लिखा है यह जीवन प्रकट हुआ, अर्थात मनुष्य के लिए सामने आया कि वह उसका अनुभव करे। एक बार मेरे प्रचार करने के बाद एक मनुष्य ने आकर मुझसे पूछा, आप कहते हैं अनंत जीवन, तो यह अनंत जीवन क्या है? मैंने उसे इसी पद का संदर्भ दिया, अनंत जीवन प्रभु यीशु है। यदि आप उसकी परिभाषा चाहते हैं तो अनंत जीवन एक व्यक्ति है और वह व्यक्ति प्रभु यीशु है। यह इतनी आसान बात है कि यदि आप उसे ग्रहण करें तो आपको प्रभु यीशु मिलेगा, अन्यथा आपको प्रभु यीशु के बिना रहना होगा। आप उसमें विश्वास करें तो अनंत जीवन पाएंगे। अब क्योंकि वह अनंत जीवन है तो क्या आपके पास अनंत जीवन है? यह सुनकर वह चला गया। इसका अर्थ है कि उसके पास अनंत जीवन नहीं था और न ही वह अनंत जीवन पाना चाहता था। मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ सहभागिता कैसे करें? यूहन्ना हमें एक अद्भुत बात बताएगा कि हम परमेश्वर के साथ सहभागिता कैसे कर सकते हैं। यह हमारा महिमामय सौभाग्य है कि हम परमेश्वर के साथ सहभागिता कर सकते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना की पत्री एक अध्याय उसका तीन पद। यहां पर लिखा है, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए, लिखा है जो कुछ हमने देखा और सुना है। यह तीसरी बार है कि हमारे मन मस्तिष्क में समा जाए। यूहन्ना, आप इसे क्यों दोहराते हैं? इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, अर्थात पारस्परिक सहभागिता। हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु के साथ है। परमेश्वर अति पवित्र है और मनुष्य अपवित्र है, तो दोनों कैसे सहभागिता कर पाएंगे? आमोस कहता है तीसरे अध्याय उसके तीन पद में कि जब तक दो मनुष्य परस्पर सहमत ना होए, साथ साथ कैसे रह सकते हैं? अतः यूहन्ना इस समस्या के तीन समाधान सुझाता है। दो मनुष्य के हैं और कारगर नहीं है, परंतु तीसरा परमेश्वर का है और कारगर है। सहभागिता का अर्थ है मसीह की बातों को बांटना, अर्थात मसीही सहभागिता हमें यही सिखाती है। इसके लिए हमें प्रभु यीशु को जानना है, उसके बारे में ही नहीं जानना वरन उसे अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता भी मानना है। आज हम सहभागिता का मूल अर्थ भूल गए हैं। मुझे एक बार एक क्लब में प्रचार करने को बुलाया गया। उनके झंडे पर लिखा था मनोरंजन, भोजन, सहभागिता। उनका भोजन तो जो था सो था, उनका मनोरंजन अभद्र चुटकुले था और सहभागिता थी एक दूसरे की पीठ पर हाथ रखकर पूछना, काम कैसा चल रहा है, आपकी पत्नी कैसी है, और फिर उन्होंने एक गीत गाया। यह उनकी सहभागिता थी। मेरे मित्रों, मसीही सहभागिता सर्वथा भिन्न है। आप सहभागिता भोज में आते हैं और विविध विषयों पर चर्चा करते हैं, परंतु प्रभु यीशु की नहीं। सहभागिता का जो सर्वोत्तम उदाहरण मैंने देखा है वह है एक यूनिवर्सिटी में। वहां उठते बैठते, खाते पीते, कक्षा में और कक्षा के बाहर आप केवल सिर्फ ज्ञान की बातों की ही चर्चा सुनते हैं। मेरे प्रियो, यूहन्ना का कहने का अर्थ यही था कि हम सदा सर्वदा हर जगह हर समय प्रभु यीशु की चर्चा करें, यही सच्ची सहभागिता है। परंतु आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम में से बहुत सारे लोग इस सहभागिता को नहीं समझ पाते हैं और इस सहभागिता का गलत अर्थ निकालते हैं। यही कारण है कि यूहन्ना हमें इस पत्री के द्वारा सहभागिता की बातें समझा रहा है। मेरे श्रोता मित्रों, आज क्या मैं और आप सचमुच में सच्ची सहभागिता कर रहे हैं या हम संसार की सहभागिता में लिप्त हैं? परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को बदलें और उसकी सच्ची सहभागिता को पहचानें, ताकि हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, सारी बातों के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। मेरे मित्रों, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुतायत से आशीष दे, आप सबकी सहायता करे, ताकि हम और अधिक परमेश्वर के वचन में बढ़ने पाए।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
हम सभी को